अध्याय दो उपन्यास रचना प्रक्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क माणभट्ट की आत्मकथा क्लासिकी से फूटती आधुनिक रचनाशीलता ख चारुचंद्र लेख सामंती व्यवस्था की पतन गाथा ग पुनर्नवा उपभोक्ता दृष्टि का अस्वीकार घ अनामदास का पोथा तप नहीं केवल जीवन सत्य क बाणभट्ट की आत्मकथा क्लासिकी से फूटती आधुनिक रचनाशीलता। भारतीय साहित्य में अपने समय के महान सर्जक बाणभट्ट की जीवनी को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करने वाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसा ऐतिहासिक रोमांस है जिसे हर्षकालीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है। उपन्यासकार की इतिहास यात्रा अपने वर्तमान से पलायन नहीं अतीत के पुनर्निर्माण का रचनात्मक प्रयास है। इतिहास के शव को शिव बनाने की साधना है और मनुष्य की जय यात्रा का महान उद्घोष है। अपने वर्तमान समाज के विकास की दिशा और साहित्य की रचनाशीलता की अपेक्षा में प्रागैतिहासिक और मध्ययुगीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपरा में सृजनात्मक मूल्यों की तलाश करना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। यह आवश्यक नहीं है कि आचार्य द्विवेदी का सत्य सार्वजनिक सत्य हो, किंतु इस प्रकार के औपन्यासिक रचनाशीलता के लिए जिस गहरे इतिहास बोध और परंपरा ज्ञान की आवश्यकता होती है उस ओर से निश्चय ही उनके ऐतिहासिक उपन्यास हमें आश्वस्त करते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास केवल तिथियों और घटनाओं के संग्रह मात्र नहीं होते, बल्कि उनमें रचनाकार अपने सृजनात्मक कल्पना और यथार्थ बोध की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से उस युग के संपूर्ण मनुष्य के सामाजिक संबंधों की गतिशील परंपरा का विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसा ही उपन्यास है जिसकी घटनाएं मुख्यतः उपन्यासकार की उर्वर कल्पना और रचनात्मक प्रतिभा की उपज होने के बावजूद उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पुनर्सृष्टि करने में सर्वथा सफल हुई हैं जिसमें सातवीं शताब्दी का हर्षकालीन भारतीय समाज अपने समस्त गुण दोषों के साथ जीवंत हो उठा है। अतीत के गह्वर में उपन्यासकार का निर्भय प्रवेश न तो उसे अभिभूत करता है और न स्तब्ध, बल्कि तिमिराच्छन्न कुहासे को बेध कर उसे और अधिक आकर्षक और चमत्कार बनाकर वर्तमान की मूल्यवत्ता के साथ जोड़ते हुए उसे प्रासंगिक बना देना ही उपन्यासकार की तीसरी आंख का करिश्मा है। तुवर मिलिंद इतिहासकारों के लिए एक जटिल समस्या है और उपन्यासकार ने उनके अनैतिहासिक अस्तित्व की रक्षा करते हुए उन्हें पर्दे के पीछे ही रहने दिया है, किंतु गौरवमय विशेषणों से अलंकृत उनके नाम का इतना कलात्मक और सार्थक उपयोग किया गया है जो भट्टिनी के परिचय को प्रगाढ़ ही नहीं बनाता बल्कि उसके अभिजात्य और सम्मान का वाहक बन जाता है। घटनाक्रम में बराबर अनुपस्थित रहने के बावजूद विषम समय विजयी वहलोक विमर्दन प्रत्यांत वाडव देवपुत्र तुअर मिलिंद सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक की तरह बीच बीच में प्रस्तुत किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास की वास्तविक जानकारी अथवा टूटी हुई श्रृंखला की तलाश के लिए साहित्यिक साक्ष्य को उतना प्रामाणिक न मानकर लोक परंपराओं के अनुसंधान परक अध्ययन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने मेरी जन्मभूमि शीर्षक निबंध में लिखा है कि यदि मुझे अपने गाँव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। निसंदेह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति चिन्हों की कोई चर्चा न आना क्षोभ का भी विषय है। हमारी भाषा में इनकी संस्कृति स्मृति है, हमारे जीवन में इनका पदचिन्ह है, हमारी चिंताधारा में इनका कोई स्थान होगा ही नहीं, यह कैसे मान लो अशोक के फूल। कहना न होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में पूरी सफलता के साथ अपने संकल्प को सच करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की लोक भाषा की मौखिक परंपरा में अत्यंत लोकप्रिय लूरिक चंदा की प्रेम गाथा जिसका एक मजबूत सांस्कृतिक टांका बलिया जिले के हल्दी गांव में गड़ा हुआ है कि नायक लूरिक को सामंत लूरिक देव की ऐतिहासिक गरिमा प्रदान करता था, उसको सिंधु और कुंभा के उस पार तक समुद्रगुप्त का गरुणध्वज फहराते हुए चित्रित कर ऐतिहासिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार फिर इतिहासकारों को चक्कर में डाल दिया है। उपन्यासकार की जन्मभूमि से बद्ध एक सामान्य मनुष्य की जय यात्रा इतिहास यात्रा भले न हो, किंतु उसकी सांस्कृतिक यात्रा की संभावनाओं को नकारा कैसे जा सकता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संभावनाओं को अंधेरी की चिंगारी के रूप में इतिहास की बहुत बड़ी शक्ति मानते हो। उनके अनुसार हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास काल विधाता के हाथों इस प्रकार सी दिया गया है कि उसे प्रांतीय सीमाओं में बात कर देखने से ऐतिहासिक सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह सहज संयोग नहीं है कि हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने जोर देकर यह स्थापित किया है कि हिंदी साहित्य वस्तुतः लोक साहित्य है और साहित्य मूल्यांकन की एक इस ऐतिहासिक अवधारणा को आदिकाल में और स्पष्ट करते हुए बताया कि आदिकालीन साहित्य की रास्व काव्य परंपरा, अभ्रंश की चरित्र काव्य परंपरा आदि का मूल चरित्र लोक गाथात्मक है और पूर्व मध्यकाल का सूफी प्रेम काव्य उसी लुप्त होती हुई परंपरा का अगला विकास है जो गांव घर की बैठकों और चौपालों की अपनी चीज थी। आगे चलकर कृष्ण भक्ति काव्य में पौराणिक आख्यानों का शास्त्रीय सहारा पाकर यह रोमांटिक परंपरा और अधिक चमकदार बन गई। तंत्र साधना के परकिया भावना के मधुर समागम के कारण सूर की रोमांटिक कविता का तरल आवेग क्लासिकल संयम से अनुशासित होकर गूढ़ और उद्दीप्त भाव से प्रकट हुआ है। कहना न होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना प्रक्रिया का मूल सूत्र कृष्ण भक्ति काव्य की इसी निगूढ़ और अद्वित प्रेम व्यंजना से विन्यस्त है और गप को गल्प की रचनाशीलता में तब्दील कर उसे इतिहास के समानांतर खड़ा कर देना हरिहर प्रसाद द्विवेदी की रचना प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपादान है। बाण भट्ट की आत्मकथा का वस्तुविन्यास कादम्बरी और हर्षचरित की कथा आख्यायिका की शैली पर आधारित है। आख्यायिका उच्छ्वासों के प्रकरण विभाग में बंधी हुई ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित होती है और कथा की कथावस्तु का आधार काल्पनिक होता है। एक घटना प्रधान होती है, दूसरी वर्णन प्रधान। बाण भट्ट की आत्मकथा में गद्य काव्य की इन दोनों शैलियों का मिश्रित प्रयोग किया गया है जिसके चलते कथा प्रवाह में कुछ शिथिलता आ गई है। बाण भट्ट भट्टिनी और निपुड़िका की मुख्य कथा कल्पना प्रसूत और वर्णनात्मक है। सुचरिता विरति वज्र तथा महामाया अघोर भैरव की प्रासंगिक घटनाएं मुख्य कथा सूत्र को व्यापक सांस्कृतिक धरातल प्रदान करने के लिए इस कौशल के साथ बुनी गई हैं कि उससे एक समूचे युग की कला, साहित्य, भाषा, समाज, धर्म दर्शन और इतिहास की परंपरा अपने पूरे परिवेश के साथ जीवंत हो उठी है। इसके लिए बाण भट्ट की रचनाएं की अतिरिक्त मालती माधव, रत्नावली, कामसूत्र, पृच्छकटिक, नागानंद, महाभारत, विक्रमोवंशी, कुमार संभव, रघुवंश, मिलिंद प्रश्न, बृहत संहिता, भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, नाट्यशास्त्र, मेघदूत आदि के संदर्भों से अपेक्षित सहायता ली गई है। बाण भट्ट की जीवनी को आत्मकथा की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपने को पूरी तरह तस्थ बताते हुए उपन्यासकार हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने ब्योमकेश शास्त्री का मुखौटा लगाकर बाण भट्ट की नाटक मंडली में अपने आप को शामिल कर लिया है और इससे संदेह नहीं कि उन्होंने इस महान सर्जक कलाकार की चुनौती भरी भूमिका को जीने में अद्भुत सफलता अर्जित की है। कादम्बरी के अध्यात्मोन्मुख रोमांस को उन्होंने मनुष्य के सामाजिक रचनाशीलता का गौरव दिया और वाणोच्छिष्ट जगत सर्वम की लोकोक्ति को झुटलाने का साहस सिखाया। यह सुखद संयोग है कि शास्त्र ज्ञान और सामाजिक अनुभव, पांडित्य और फक्कड़ता, संयम और आवेग दोनों ही रचनाकार के समान गुण हैं जिसके चलते बाण भट्ट की जीवनी प्रमाणिक रूप से बाण भट्ट की आत्मकथा बन गई है। इनवर्टेड कॉमा, यह आत्मकथा समग्र मानव की मुक्ति प्रसंग की संदर्भ व्याख्या है। अकारण आरोपित सामाजिक स्तर भेद को मिटा डालने का संकल्प है। नरलोक से लेकर किंदर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय की तलाश है। इतिहास की सांस्कृतिक यात्रा है, परंपरा का पुनर्मूल्यांकन है और मनुष्यता की स्थापना है। इसमें महान लक्ष्य के लिए अपने को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ कर दे देने का यह जीवन दर्शन है। महाभाराज उसके प्रतीक विग्रह हैं और भट्टिनी न्यूनिया तथा माणभट्ट उसके साधक। जलोघमना सचराचर धरा का सतत बनने वाला मूलतः स्वर अंततः भागवत धर्म की पूर्णता का साक्षात्कार कर लोक शक्ति की चेतना का वाहक बन गया है। स्थाणेश्वर में न्यूनिया उनकी प्रथम सदस्य थी और बाद में उसकी अंतरंग सखी सुचरिता ने दीक्षा लेकर उस भक्ति साधना को इस प्रकार संगठित किया कि देखते देखते वह नगर के अंतःपुर की समस्त महिलाओं की बेसहारा जिंदगी का एकमात्र सहारा बन गया। यह वह समय था जब धर्म अपनी प्रेरक शक्ति खोने लगा था और समाज में बाह्याचारों, मिथ्या विश्वासों, चमत्कारिक सिद्धियों आदि के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष की दीक्षा देने वाले धर्माचार्यों, सन्यासियों, भिक्षु भिक्षुणियों के ऊपर से मनुष्य का विश्वास उठता जा रहा था। भिक्षु भिक्षुणियों या उन्मुक्त यौनाचार संघों को ही नहीं गृहस्थ जीवन को भी दूषित करने लगा था। भिक्षुणियां प्रेमाचार के व्यापार में बिचौलियों की भूमिका में उतर आई थी। इन सब के चलते गृहस्थ जीवन का वातावरण कलहपूर्ण और अशांत हो उठा था। काम कुंठा और धन लोलुपता पुजारियों और सन्यासियों के धार्मिक पाखंड के भीतर सहज ही पनपने लगी थी। बाणभट्ट की आत्मकथा में जटिल वटु का प्रसंग और चंडी मंदिर के त्रमण पुजारी का आख्यान केवल सरस वातावरण की सृष्टि के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि मनुष्य सत्य को मारने वाले शास्त्रों और उन रूढ़ियों की हिमायती धर्म के ढोंगे पहरादारों को नंगा करते हुए उपन्यास कार्य बताना चाहता है कि प्रवृत्तियों से डरना गलत है, उन्हें छिपाना अनुचित है और उनसे लज्जित होना वालिष्ठता है। इसी प्रकार की सामाजिक विडम्बना ने सुचरिता के जीवन को वीरान बना दिया है। वैवाहिक जीवन की आरंभिक अवस्था में मोक्ष की चिंता से चिंतित पतिदेव का जीवा वैरागी की अस्वाभाविक जिंदगी जीना तथा घर में विधवा माँ और युवा पत्नी को बेसहारा छोड़कर संसार के प्राणियों को दुख बांटने निकल पड़ना अब श्रद्धा और सम्मान की वस्तु नहीं रह गई थी। चीवरधारी युवा तापस वर्तिवज्र की विधवा माँ का आहत ममत्व जब स्वयं अपने बेटे पर बरस पड़ता है। इनोटेड कमा, अरे मूढ़, रटी हुई बोली बोल रहा है तू, भंड है वह धर्माचार जो अपनी माता को और भी पहचानने में लज्जा अनुभव कराता है। इस दुख में संसार को और भी दुख में बनाकर ही क्या तेरा सुख का राजमार्ग तैयार होगा? स्वार्थी है तेरा मार्ग, धिक्कार है तेरे पौरुष को। तो ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म का गतिशील सामाजिक अनुभव अपने ही तत्ववाद की नपुंसक जड़ी माँ को गाली दे रहा है। इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में भागवत संप्रदाय की भक्ति भावना सामान्य समुदाय को शोषित पीड़ित जीवन में एक नई चेतना का संचार कर रही थी। बौद्ध महायान की मंत्रयान शाखा से जन्मे वज्रयान का आगम तंत्र के शक्त पंथ से विलक्षण संयोग हो चुका था और इन दोनों के संयोग से कौल कपालिक परंपरा का विकास हुआ। तंत्रवाद का प्रभाव भागवत संप्रदाय पर भी पड़ा। तांत्रिक अनुष्ठानों में स्त्री एक आवश्यक उपादान मानी जाती है और इस प्रकार भागवत संप्रदाय में राधा और गोपियों के रूप में तंत्र पंत्र की साधना स्वरूप परकिया वैष्णव भक्ति में प्रेम का साधन बन गई। यही कारण है कि चैतन्य देव की वैष्णव भक्ति में परकिया रूप को विशेष महत्व दिया गया है। वस्तुतः वेंकटेश भट्ट विरति वज्र और सुचरिता से संबद्ध आख्यान आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित उन ऐतिहासिक अवधारणाओं से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है जिनकी स्थापना उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में और सूर साहित्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में की है। सूर साहित्य में उन्होंने वैष्णव हिंदी भक्ति पर किसी की बाहरी प्रभाव की मान्यता को निरस्त करते हुए उसे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास बताया है और इसी क्रम में कृष्ण भक्त कवियों के रोमांटिक प्रेम पद्धति को तंत्र साधना के परिक्रिया रूप से जोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उस मान्यता का भी खंडन किया है जिसके चलते उन्होंने सूर्य के प्रेम पर सूफी प्रभाव देखते हुए अभारती घोषित कर दिया था। इतना नहीं, सूफियों की प्रेम पद्धति को भी आचार्य द्विवेदी ने भारतीय परंपरा के स्वाभाविक विकास के रूप में निरूपित किया है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने स्थापित किया है कि 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म काफी प्रबल था और उसके बाद उस धर्म का क्या हुआ इसका ठीक ठीक विवरण नहीं मिलता, किंतु उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेशों के धर्मगत विचारधारा और साहित्य पर निश्चय ही वह अपना अमिट प्रभाव छोड़ गया है। हमारे सामने आज भी भारतीय गृहस्थ परंपरा विरोधी मतों के मानने वाले साधुओं की तथा भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न प्रकृति के देवताओं की पूजा करता है। उन दिनों हिंदू समाज में लोग बौद्ध भिक्षुओं के उपदिष्ट देवताओं के कल्याण कामना से पूजा करते थे और उनके बताए हुए ढंग से जप आदि भी करते थे जो बौद्ध मठों के उड़ जाने के बाद भी उठ नहीं पाया, बल्कि समाज में ज्यों का त्यों रह गया। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि शंकर, कुमारिल और उदयन आदि वेदांतिक और मीमांसक आचार्य बौद्ध धर्म के निर्वासन के कारण माने जाते हैं, तो उसका तात्पर्य यही हो सकता है कि बुद्धिजीवियों और ऊपरले स्तर के लोगों के मन पर से बौद्ध धर्म के दार्शनिक तर्क जाल की आस्था उठ गई, क्योंकि ये लोग बौद्ध तत्ववाद के कायल थे, भक्तिवाद के नहीं, जबकि साधारण जनता का तत्ववाद से कोई संबंध नहीं था। बौद्ध धर्म के रूपांतरण की यह प्रक्रिया और ऊपरले स्तर के लोगों तथा बुद्धिजीवियों में होने वाली उसकी प्रतिक्रिया का व्यवहारिक रूप सचरिता में विरति वज्र के गृहस्थाश्रम प्रवेश में देखा जा सकता है। इसके सूत्रधार नवनिया और सुचरिता के गुरु वैष्णव तांत्रिक आचार्य वेंकटेश भट्ट है, जो पहले उड्डियान पीठ में सांगत तंत्र के उपासक थे और जब वामाचार्यों और कपालिकों की साधना भूमि श्री पर्वत पर आरूढ़ स्थानेश्वर के भद्रलोक की दृष्टि में एक विलक्षण भक्ति साधना का प्रचार कर रहे हैं। गुरु की अनुमति से एक सन्यासी का गृहस्थ बनना स्थानेश्वर की इतनी महत्वपूर्ण घटना क्यों बन जाती है, जिसकी चरम परिणति सुचरिता वृत्ति वज्र के बंदी बनाए जाने, वेंकटेश भट्ट और अघोर भैरव के नगर निष्कासन और अंततः प्रजा के असंतोष एवं विद्रोह में होती है। कहना न होगा कि इसके पीछे निर्वीय नगर सभ्यता के खोखली सामंती शाही की छत्र छाया में पलने वाले बौद्ध धर्म के सांप्रदायिक विद्वेष, ढोंगी बौद्ध पंडित वसुभूति और उसके नगर श्रेष्ठ शिष्य धनदत्त के बीच छल छद में भरे उसकी शान गांठ तथा राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले आचार विचार में चिपकू और वायव व्यवहार में लचीले सनातन धर्म पंडितों की अवसरवादी नीति का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे स्पष्ट करती हुई सुचरिता बाणभट्ट से कहती है। इनोटेड कामा। ये दो प्रतिद्वंदी स्वार्थों का संघात है। आर्य हम लोग तो निमित्त बने हैं। धनदत्त के गुरु भदंत वसुमती बौद्ध धर्म को जिता कर ही छोड़ेंगे और वसुभूति के प्रतिभट परम स्वार्थाचार मेधातिथि सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करके ही दम लेंगे। मनुष्य चाहे चुलेभाण में, इन्हें अपने धर्म मत का डिडिम पीटना है। एक ही पीठ पर राज शक्ति है और दूसरे की हथेली में प्रजा का विद्रोह। विरति वज्र का बौद्ध से वैष्णव होना ही मानव संसार की सबसे बड़ी घटना है। यूनाइटेड कामा बाणभट्ट की आत्मकथा। जाहिर है कि भद्रलोक के तत्ववादी बौद्ध ब्राह्मण बुद्धिजीवियों के आपसी संघर्ष से आहत धर्म भक्ति के स्वाभाविक मार्ग से लोक धर्म की ओर उन्मुख हो चला था। प्रसंगवश जान लेना जरूरी है कि सुचरिता की तलाश में निकले बाणभट्ट जब उस विशाल पट मंडप पर पहुंचते हैं जहां वैष्णव तांत्रिक व्योमकेश भट्ट का भक्ति अनुष्ठान चल रहा होता है, तो यह देख कर चकित रह गए कि उस धार्मिक अनुष्ठान में नए नए उपादानों का अद्भुत मिश्रण किया गया था। अनुष्ठान की समाप्ति पर गुरु ने भक्तजनों को उपदेश दिया। इनोटेड कामा। नारायण के चरणाबिंद दो तीन पापियों का उद्धार कर सके हैं, पर उनके नाम ने समस्त जन के निशेष क्लेश के शमन का व्रत लिया है। इनोटेड कामा। इसके साथ ही राधा भाव से लीन होकर कृष्ण अर्पित वेंकटेश भट्ट जब गाते गाते नाचने लगे तो स्वयंवक गमगमा उठा, कास्य और करताल झंझना उठे और उस अद्भुत भाव विवल अवस्था में वे एकाध बार बेहोश होकर गिर पड़े। यह बताना आवश्यक है कि वेंकटेश भट्ट के इस होलिया का रहस्य उपसंहार की उस सांकेतिक टिप्पणी से विन्यस्त है जिसमें उपन्यासकार ने लिखा है कि मध्ययुग के किसी किसी कवि ने राधा की एक उत्कृष्ट अभिलाषा का वर्णन किया है कि वे समझ सकती कि कृष्ण उनमें क्या रस पाते हैं। कृष्ण ने भी कभी कहते हैं कि राधिका की दृष्टि से अपने को देखना चाहा था और इसीलिए नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। काव्य और धर्म साधना की दुनिया में जो कल्पना थी उसे दीदी ने अपने जीवन में सत्य करके दिखा दिया। नोटेड कामन। इस प्रकार दीदी के सच को उजागर कर अपने सच को छिपाते हुए व्योमकेश शास्त्री ने कथा शिल्प को एक नाटकीय मोड़ दे दिया और इस क्रम में वे अपने पाठकों को यह याद दिलाना नहीं भूलते कि बाणभट्ट की अन्य रचनाओं की तरह ही बाणभट्ट की आत्मकथा भी अधूरी है। इस उपन्यास के सारे पात्र जीवित मनुष्य हैं और सभी उपन्यासकार की आत्मीयता के भागीदार हैं। अपने व्यक्तित्व की पहचान के साथ ही वह पूरे परिवेश के साथ चित्रित किए गए हैं। महिनी, नवनिया, महामाया, सुचरिता सभी किसी न किसी प्रकार की सामाजिक विडंबना और शोषण के शिकार हैं। बाहर से देखने पर उनकी अमानवीय समस्याएं अलग दिखाई पड़ती हैं, किंतु भीतर से उनमें एक सूत्रता है। पतनोन्मुखी समांति विलासिता के आवर्त में फंसी भट्टिनी का बाणभट्ट के से प्रथम परिचय असुर गृह में कैद लक्ष्मी और अशोक वन की सीता के रूप में कराया गया है। उसके उद्धार के लिए बाणभट्ट को नियोजित कर आजीवन अभिनय करने वाली कुशल अभिनेत्री नवनिया ने एक महान सिद्धि के लिए अपनी सिद्धि को सोपान मान लिया। बड़े सत्य के लिए छोटे सत्य को अवरुद्धि बना देना नवनिया के मानवीय चरित्र की अपनी निजी विशेषता है। यही कारण है कि बाणभट्ट और महीने से उसका प्रेम संबंध कहीं और उदक नहीं बन पाता। अभिनय करके जिसे पाया था अभिनय करके उसे खो दिया और महीने के शब्दों में प्रेम की दो दिशाओं को एक कर दिया। स्वयं बाणभट्ट को निपुणिका विहीन महीने की कल्पना जड़ बना देती है। उसने बार बार भट्ट की जड़ता को तोड़ा था। उसके सामने अपने पुरुषत्व का गर्व, पांडित्य का गर्व और कौलिन्य का गर्व कितनी बार भर भरा कर गिर चुका था। इसी अर्थ में निपुणिका स्त्री जाति का सिंगार थी, सतत्व की मर्यादा थी, उन मार्गगामी नारियों को मार्गदर्शिका थी, जड़ीभूति समाज की स्पंदन चेतना थी, राधा कृष्ण की ललिता थी, लीलावती थी, मोहिनी थी, सद्गुणों की खान थी और सबसे बढ़कर भट्टिनी के उद्धार के माध्यम से राष्ट्रीय उद्धार के संयोजिका शक्ति थी। किंतु सवाल केवल एक भट्टिनी के उद्धार का नहीं, सवाल केवल छोटे राजकुल के अंतःपुर में सौतों के उस भयानक जंगल का भी नहीं है जिसके सूने गलियारों को भरने के लिए न जाने कितनी सुंदर जिंदगियों को कैद कर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल लाखों करोड़ों की संख्या में अकारण दंडित उस मानवता का है जो सामंती पुरोहिती समाज व्यवस्था के दमन चक्की के नीचे पिस रही है। इन सवालों से बाणभट्ट भी टकराते हैं, किंतु प्रभावशाली रूप में इस बड़े सवाल को उठाया है भैरवी महामाया ने, जो स्वयं राजकुल के अंतःपुर की कैद से मुक्त होकर भी सामाजिक मुक्ति के लिए अशांत बनी हुई है। इस प्रश्न को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ देती हुई महामाया कहती है, इन्वर्टेड कामा। इस उत्तरापथ में लाख लाख निरी बहुओं और बेटियों के अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा है? क्या निरीह प्रजा की बेटियां उनकी नयनतारा नहीं हुआ करती? क्या राजा और सेनापति की बेटियों को खो जाना इस संसार की दुर्घटनाएं हैं? इन्वर्टेड कॉमा। कर्ण नौ की महामाया द्वारा उठाया गया प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। अपने कुल लाखों निरीह बहु बेटियों के कतार में खड़ी कर उन्होंने प्रश्न को गहराते हुए और भी विश्वसनीय एवं प्रभावशाली बना दिया। आगे वह कहती है, इन्वर्टेड कॉमा, मैं तुम्हारे देश की लाख लाख अवमानित, लांछित और अकारण दंडित बेटियों में से एक हूँ। कौन नहीं जानता कि इस दृढ़ित व्यवसाय के प्रधान आश्रय सामंतों और राजाओं के अंतःपुर हैं? आप में से किसी को नहीं मालूम कि महाराजा धीराज की चमरधारणियाँ और करकरवाहिनियाँ इसी प्रकार भगाई हुई और खरीदी हुई कन्याएं हैं? माणभट्ट की आत्मकथा और इसके साथ ही अमृत पुत्रों को संबोधित उनका उद्बोधन गीत तो कथा के रोमांटिक काव्य संवेदना को जागो फिर एक बार की ओजस्विता में डाल देता है। काफी देर तक मृत्यु का भय माया है का स्वर सभा मंडप में बसता रहता है और इसकी अनुगूंज स्थानेश्वर की दुर्भेद्य प्रस्तर भित्तियों को चीर कर सभा से बाहर नगर के गली कूचों में फैलती गवाक्षों से टकराने लगती है। इनोटेड कामा। न्याय के लिए प्राण देना सीखो, सत्य के लिए प्राण देना सीखो, धर्म के लिए प्राण देना सीखो, अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय माया है। इनोटेड कामा। भीड़ बढ़ने लगती है, पटमंडप उस स्फीत जन संपर्द को धारण करने में असमर्थ हो जाता है और हजार हजार कंठों से दीर्घ दीर्घायित स्वर प्रतिध्वनित हो उठता है, मृत्यु का भय माया है। और आगे चलकर भट्टनी के स्वागत में लोरिक देव के 1000 लठैत सैनिकों को संबोधित महामाया के गैरिक धारण शिष्यों का जन गान इस स्वर को घनीभूत बनाता है। ध्यान देने की बात है कि एक ओर तो महामाया विभिन्न स्तर भेदों में बटे नागरिकों को संबोधित करती हुई कहती है कि दुर्घर्ष मलिक्ष वाहिनी का सामना राजपुत्रों की वेतन भोगी सेना नहीं कर सकेगी। राजाओं, राजपुत्रों, देवपुत्रों की आशा छोड़ो, धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं। न्याय जहां से भी मिले बलपूर्वक खींच लाओ, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक एक हो जाओ, धर्म रक्षा शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने की नहीं होती इत्यादि। वही दूसरी ओर उनकी शिष्याएं लोरिक देव के आवेश सैनिकों को संबोधित करती हैं, आर्यावर्त के तरुणों, जीना सीखो, मरना सीखो, इतिहास से सीखना सीखो जवानों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। इन्होंने काम अपन। तो क्या नागरिकों और आवेश सैनिकों के एक जैसे संबोधन में कोई अंतर विरोध है? वस्तुतः लोरिक देव की सेना सेना नहीं बल्कि एक सामूहिक जन संगठन है जो अपने अवशिष्ट कबीलाई संस्कारों के चलते जातिगत स्तर भेदों के बाहुल्य दोष से बहुत कुछ मुक्त है। ताकत तथाकथित मलिक्ष वाहिनी का मुकाबला करने के लिए जिस अपेक्षित एकजुटता और जन संगठनात्मक क्षमता की आवश्यकता है वह न तो राजाओं की वेतनभोगी सेना में है और न ही विभिन्न स्तर भेदों में विभाजित खोखले समाज में। धर्म की नपुंसकता, धर्माचार्यों को ढोंग पाखंड और आपसी ईर्ष्या द्वेष, सामंतों की लंपट विलासिता और पतनमुखी सामंती व्यवस्था के जड़ता पर अत्यंत तीखा प्रहार करते हुए महामाया ने जीवन के गंभीरतर सवालों की ओर संकेत किया है जो आधुनिक नवजागरण के पुनरुत्थानवादी स्वर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। फिर भी यह सवाल तो शेष ही रह जाता है कि क्या महामाया का सत्य अविभाजित मनुष्य का सत्य है? इस संदर्भ में विचार करते हुए भट्टनी ने महामाया के वक्तव्य में निहित शुद्धतावादी पौराणिक स्वर की ओर इशारा कर महामाया के सत्य को अर्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया है। वह कहती है, यह क्या सत्य नहीं है कि यौवन कन्या भी मनुष्य है और ब्राह्मण युवा भी मनुष्य है? महामाया जिन्हें मिल चुका रही है वे भी मनुष्य है। भेद इतना है कि उनमें सामाजिक ऊंच नीच का भेद ऐसा नहीं है। माणभट्ट की आत्मकथा। जाहिर है कि भट्टनी सामाजिक उच्च नीच भेदों की विषमता और उसके सामाजिक दुष्प्रभाव को एक दार्शनिक की तटस्थ दृष्टि से न देखकर मानवीय करुणा की दृष्टि से देखती है जिससे उनकी पीड़ा का आत्मसत्य छिपा हुआ है। कबीर आदि संत कवियों ने जिस पीड़ा के आक्रामक शैली में व्यक्त किया उसी को भट्टनी सूर्य की विनम्र विद्रोह वाली शैली में कहना चाहती है। इस प्रकार भट्टनी सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध अंतर्विरोधों की मूलगामी चेतना का विश्लेषण करते हुए नरलोक से लेकर किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रगात्मक हृदय की बात कर एक सामाजिक सांस्कृतिक की संभावना की ओर संकेत करती है और इस दृष्टि से उसके सत्य को मनुष्य सत्य कहा जा सकता है। इसकी व्यावहारिक चरितार्थता का सवाल फिर भी बना रह जाता है जिसका हल न तो भट्टनी के पास है और न बाणभट्ट के पास। हल तो आलोचक आचार्य प्रसाद द्विवेदी के पास भी नहीं है लेकिन इसके मूलगामी कारणों के रूप में कर्मफल और पूर्वजन्म के सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने अपने कई निबंधों में की है और यह बताया है कि यह सिद्धांत भारतीय समाज की जड़ों में इस प्रकार बैठा दिए गए हैं कि चंडाल अपनी दुर्गति के लिए कर्मफल की दुहाई देता है और ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए भी कर्म की ही दुहाई देता है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित एवं न्याय संगत कारण मान लेने से अन्याय के प्रति विद्रोह करने की संभावना दब जाती है, जिसके चलते जड़ता का शिकार होकर कोई भी जाति अधपतन की ओर बढ़ने लगती है। हिंदू जाति के इस चिंतनीय पक्ष का कारण यह सिद्धांत है, जिसके कारण भारतीय समाज में समय समय पर किए गए परिवर्तनकामी आंदोलन सफल नहीं हो सके। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस सामाजिक जड़ता को तोड़ना उपन्यासकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह आकस्मिक नहीं है कि जड़ीभूत मान्यताओं के स्तूपीभूत गढ़ को ढहाने वाले पात्र पर्याय वे हैं जो कि निविशेषण सामाजिक परिस्थितियों में घर से भागे हुए हैं या फिर भगाए गए हैं अथवा अपहृत हैं। पहली कोटि में बाणभट्ट और निपुणिका आते हैं तथा दूसरी में भट्टिनी और महामाया। बाणभट्ट का आरंभिक जीवन एक बिगड़े हुए आवारा छोकरे के रूप में चित्रित किया गया है, जो छोकरियों को भगवान से लेकर अनेक उड्डनतापूर्ण आचरण करने वाले लोकापवादों से घिरा हुआ है। आगे चलकर यही बाणभट्ट नारी देह की नारायण का पवित्र मंदिर मानने वाले सच्चरित्र और आदर्श नवयुवक के रूप में नारी उद्धार से लेकर राष्ट्र रक्षा के महान दायित्व का निर्वाह करते हैं। जीवन की यांत्रिक आचार संहिता के घुटन भरे माहौल से बाहर निकलकर समाज की अनेक लांछनाओं को झेलती हुई न्यूनिया की भी इस यात्रा में बाणभट्ट की निकटतम सहयोगिनी बन जाती है। इसी प्रकार भट्टनी और महामाया भी छोटे अंतपुर में स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी पाती। महामाया और अघोर भैरव अपने सन्यासी जीवन में भी आहत प्रेम की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ ही दोषपूर्ण है। निपुणिका के वैधव्य जीवन के त्रासद स्थितियों पर विचार करते हुए बाणभट्ट कहते हैं, इनोटेड कामा, निपुणिका ने कल कहा था कि मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो, आर्य मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं आजीवन दुख की निदारुण भट्टी में जलती रही? क्या स्त्री होना ही मेरे अनर्थों की जड़ नहीं है? इन शब्दों में कितना मर्मांतक दुख है यह मैं नहीं जानता हूँ। निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती थी, पर हुई नहीं। ये दिनों से साथ हों, उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा। वह हंसमुख है, कृतज्ञ है, मोहिनी है, लीलावती है, ये क्या दोष है? मेरा चित्त कहता है कि दोष किसी और वस्तु में हो जो इन सारे सद्गुणों को दुर्गुण कहकर व्याख्या कर देती है। वह वस्तु क्या है? निश्चय को बड़ा असत्य सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। इनोटेड कामाबंद। लेकिन सत्य के नाम पर सामाजिक जीवन में बद्धमूल उस महान असत्य को पहचान लेना भी काफी नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध लड़ाई में शरीक होना भी सामाजिक मंगल का विधायक है। असत्य की प्रतिष्ठा से पाखंड का प्रचार करने वाले इस प्रवयंक शक्ति से आगाह करते हुए बाबा अघोर भैरव बाणभट्ट से कहते हैं, इनोटेड कामा, देख रे, तेरे शास्त्र तुझे धोखा देते हैं। जो तेरे भीतर सत्य है उसे दबाने को कहते हैं, जो तेरे भीतर मोहन है उसे भुलाने को कहते हैं, जिसे तू पूजता है उसे छोड़ने को कहते हैं। मायाविनी है यह मायाविनी, तो इसके जाल में न फंस। समस्त पुरुषों को भरमा रही है, स्त्रियों को सता रही है, माया का दर्पण पसारे हैं। इनोटेड कामाबंद। माया का दर्पण व संबंधी पुरोहित व्यवस्था है जो झूठ को प्रेशर देकर खड़ी हो गई है। इसको पुष्ट करने वाली शास्त्र परंपरा विधि निषेध की विभाजक रेखा से पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का निर्धारण करती है। नरक के भय और शाप के दंड से मनुष्य को आतंकित करती है तथा नारी के शरीर को नरक का साधन बताती है। दोषपूर्ण में है चेहरे में ही, दोष दर्पण में है चेहरे में नहीं। यही कारण है कि चलते चलते कि बाबा बाणभट्ट को यह गुरुमत्र देना नहीं भूलते कि अपने सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। बाबा का यह सहज सत्य मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा करने वाला स्पंद चेतना का सत्य है और युगीन संदर्भ में सामाजिक जीवन के मोहभंग का सत्य है। यह न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित को जगाने वाला कबीर के सत्य का बीज मंत्र है। एक अधूरे शव साधक की साधना का अनुभव सत्य है। इसी सत्य का साक्षात्कार कर लेने से सुचरिता यह कहने का साहस करती है कि इनोटेड कामा, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है। यह नारायण का पवित्र मंदिर है। पहले इस बात को समझ गई होती तो इतना परिताप नहीं भोगना पड़ता। गुरु ने मुझे यह सब रहस्य समझा दिया है। मैं जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कलुष समझती थी वही मेरा सबसे बड़ा सत्य है। इनोटेड कामाबंद। निश्चय यह नारी देह को पाप समुच्चय मानने वाले शुद्धतावादी परंपरा के विरुद्ध खुला विद्रोह है। पुरुषार्थ चतुष्टि में इस इतर परमार्थ पुमोर्थ महानम की आस्था का उद्घोष है। मध्ययुग में सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने मनुष्य के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाने वाली इसी शास्त्र परंपरा के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिसकी ओर संकेत करते हुए आचार्य द्विवेदी ने सुर साहित्य में लिखा है, इनोटेड कामा, जिस प्रकार हवा बांधने से नहीं रुकती उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी बंधन से नहीं बंधती। एक तरफ भागने से वह दूसरी ओर निकल पड़ती है भयानक वेग से। यह दूसरी ओर निकली हुई प्रवृत्तियां मनुष्य की दुर्बलताएं हैं, जिन दोनों टीका युग के विद्वान तथा ही और अपिच की धुआंधार वर्षा के साथ शास्त्रों का उपदेश मानव समाज पर लाद रहे थे। उन्हीं दिनों सूरदास आदि संत कवियों ने इसी विरुद्धगामी प्रवृत्ति को भगवान की ओर फेर देने की चेष्टा की और आश्चर्यजनक सफलता पाई। इन्वर्टेड कॉमा बंद। नारी जीवन की सार्थकता के बारे में निपुणिका द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बाणभट्ट के अघोर भैरव के हवाले से यही बताया है। इन्वर्टेड कॉमा। प्रवृत्तियों को दबाना भी नहीं चाहिए और उनसे दबना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का देवता अलग होता है। देवता का परिचय शायद प्रवृत्तियां ही कराती हैं। हाँ, बहुत बार अपने देवता का मन ही मन पूछते तो रहते हैं पर हमें पता नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस वैष्णव प्रेम पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भक्त अपने समस्त अच्छे बुरों को कर्मों को आराध्य को अर्पित कर अकारण आरोपित पाप के दुख भोग से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में विचार करते हुए दूसरी परंपरा की खोज में डॉक्टर नामवर सिंह ने वल्लभाचार्य के अणुभाष्य से एक वक्तव्य उद्धृत किया है जिसके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा कर्म दुख रूप तब होता है जब वह अभिमान पूर्वक किया जाता है कि मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मविद जो कर्म करता है वह अपने को कर्ता मानकर नहीं ब्रह्म को असली कर्ता मानकर, इस प्रकार उसके सारे कर्म ब्रह्म को अर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार जगत के सारे व्यापारों को वह ब्रह्म प्रयत्न के रूप में देखता है वैसे ही अपने कर्मों को भी। सब कुछ करता हुआ भी वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्ता का लोक सत्ता में लय हो जाने से प्रिय अप्रिय की परिमिति भावना का परिहार हो जाता है। इस दशा को प्राप्त जीव करता और भोक्ता होकर भी दुख से परे रहता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आत्मकथा के शिल्प प्रयोग में इस जीवन दर्शन की कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। भक्ति का यह सकारात्मक पहलू ही मध्ययुगीन लोक जागरण की स्पंदन चेतना है। वैष्णव तांत्रिक वेंकटेश भट्ट के संपर्क में आने पर सुचरिता के भीतर इस चेतना का संचार होता है। वह बाण भट्ट से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ आर्य, नारायण ही इस नाव का कर्णधार है। हम तो तूफान देखकर बेकार ही हाय हाय करने वाले जीव हैं। मन क्यों नहीं समझ पाता कि आर्य कि वह किसी कार्य का उत्तरदायी नहीं है? वासुदेव के रहते इतना वृथा सोच क्यों करता है वह? इन्वर्टेड कॉमा बंद। वस्तुतः सुचरिता और बाणभट्ट के लंबे संवाद के माध्यम से उपन्यासकार प्रेम संबंधी विधि निषेध की अनेक गुत्थियों को सुलझाना चाहता है। क्या काम प्रेम का विरोधी है जिस पर प्रचंड दुर्वार शक्ति के इंगित मात्र से लज्जा का जन्म ललित बंधन इस प्रकार शिथिल हो जाता है? वह क्या पाप है? वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को अपनी नयनाग्नि में भस्म करा के कवि गौरव अनुभव करे? क्या पार्वती का व्रत जड़ शरीर धर्मों का पाप आकर्षण मात्र था? दीर्घ साधना आर्य महामाया के भीतर कलुष क्यों नहीं जला सकी? ये तमाम सवालों से टकराते सुचरिता की दृष्टि गोपियों के प्रेम पद्धति पर टिक जाती है, जिसके लिए कहा गया है कि वहां काम ही प्रेम है और प्रेम ही काम है। अंत में निष्कर्ष निकालती है कि इन्वर्टेड कॉमा, वस्तुतः कलुष भी मनुष्य का अपना सत्य है। उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो सकता है। दबाने से वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। समस्त गुण अवगुण जब तक निर्विकार चित्त से नारायण को स्वप्न दे जाते तब तक वे भार मात्र हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। कहना न होगा कि भारतीय साहित्य के स्वाभाविक विकास के रूप में निरूपित यह प्रेम पद्धति कृष्ण भक्त कवियों को निगूढ़ और अद्वित प्रेम व्यंजना में विन्यस्त है, जहाँ पीने पाने की स्प्रिया के स्थान पर अपने को सर्व तो भाव दे देने की लगन है। रोमांटिक काव्य का माधुर्य है और क्लासिकल संयम की तेजस्विता है। उसमें आत्मसमर्पण के उल्लास में अनुप्राणित वह अपूर्व तन्मयता है जो पाप पुण्य के शास्त्रीय बंधनों से सर्वथा मुक्त और स्वच्छंद है। इसीलिए वह सामाजिक मंगल और आनंद का विधायक है। वस्तुतः कालिदास से लेकर सूरदास तक की यह इतिहास यात्रा भारतीय समाज और उसके भाषा साहित्य तथा कला संस्कृति की परंपरा के स्वाभाविक विकास का प्रामाणिक आख्यान है। उसमें वैराग्य की साधना का लोक धर्मी भक्ति में स्थानांतरण रूपांतरण है। नर और नारायण की अभिन्नता का उद्घोष है। बार बार शुद्धतावादियों के तीसरे नेत्र का सामना करने वाले प्रेम और सौंदर्य बोध की लोक संस्कृति की रक्षणशीलता है और सबसे बढ़कर शास्त्र ज्ञान और लोक अनुभव की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से उस सामाजिक सत्य तक पहुंचने का प्रयास है जिससे लोक का आत्यंतिक कल्याण संभव हो एवं छोटा सत्य बड़े सत्य का अविरोधी बन सके। यह उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के पांडित्य की लोकोन्मुक्तता का सबसे बड़ा सबूत है। सच बात तो सहज ढंग में समझने के अभ्यास द्विवेदी जी गंभीरता के साथ महसूस करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए अलांछित होता है उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। इन्होंने कहा बंद, इसीलिए विभिन्न सामाजिक स्तर भेद के रहते सत्य और असत्य का मेल नहीं हो सकता। सामाजिक स्तर भेद को ईश्वर का विधान बताकर सत्य और पाखंड का प्रचार कराने वाले शास्त्रों और उनके अनुयायी पुराण पंथी आचार्यों के भ्रामक मतों का प्रत्याख्यान कर लोक जीवन के सृजनात्मक मानव मूल्यों की अपेक्षा में सत्यासत्य का परीक्षण करना ही आत्मकथा की प्रमुख विशेषता है। नरलोक से किन्नरलोक तक एक ही रागात्मक हृदय की व्यापकता का संधान करने वाली भट्टिनी के माध्यम से मानवतावादी चेतना पर आधारित प्रेम और सौंदर्य बोध की सामासिक लोक संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी स्वयं महाभारत के प्रतीक विग्रह हैं। भट्टिनी के उद्धार में सुंदर की रक्षा की कल्पना ही राष्ट्र रक्षा का विकल्प बन जाता है, क्योंकि द्विवेदी जी की दृष्टि में यूनाइटेड कामा जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले पर कलात्मक विलास उसके भाग में बंदी नहीं बदा होता। प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद उसमें त्याग और भोग का ऐसा समुद्र हो जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। यह आकस्मिक नहीं कि हजरी प्रसाद द्विवेदी अशोभन को शोभन और असुंदर को सुंदर बनाना ही साहित्य का उद्देश्य मानते हैं और आत्मसम्मान को संसार की सारी सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझने वाले बाण भट्ट और भट्टनी का सारा संघर्ष इसी उद्देश्य की चरितार्थता का संघर्ष है। अतीत के आख्यान को वर्तमान की अपेक्षा में जांचना परखना ही इस उपन्यास की आधुनिकता है और यही इतिहास से सीखना सीखों की प्रेरणा का सर्वनात्मक रूप है। चारुचंद्र लेख सामंती व्यवस्था की पतन गाथा। वर्तमान की अपेक्षा में अपने अतीत के सृजनात्मक पुनर्निर्माण का प्रयास हजरी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की मौलिक पहचान है। इस कड़ी में चारुचंद्र लेख उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारतीय समाज के आंतरिक कलह तांत्रिक साधनाओं के चमत्कारिक सम्मोहन में दिग्भ्रमित मनुष्य की कुंठा और रासनमुखी स्तब्धता विश्रृंखलता और अराजकता तथा निष्पन्न चेतना की छटपटाहट को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस अर्थ से इसे मध्यकालीन सामंत समाज व्यवस्था की पतन गाथा भी कहा जा सकता है। इस उपन्यास का मूल कथा स्रोत मेरी तुंगी की रचना प्रबंध चिंतामणि है जिसमें किसी सातवाहन नामक राजा के 32 स्त्री लक्षणों से विभूषित रानी चंद्रलेखा की चर्चा की गई है जो नागार्जुन के अनुरोध पर कोटिवेदी रस बनाने में सहायता करने के लिए पार्श्वनाथ की मूर्ति के पास जाकर सिद्ध योगिनी हो गई थी। इस कथा के अनुसार नागार्जुन को चंद्रलेखा के 2 पुत्रों ने मार डाला था लेकिन आगे चलकर उन पर क्या बीती इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। कथामुख में बड़े नाटकीय ढंग से ब्योमकेश शास्त्री पाठकों को सूचित करते हैं कि हाल ही में अघोरनाथ नामक औकड़ साधु को विचित्र रूप से इस कथा का बाकी हिस्सा मिल गया है। इस प्रकार चारुचंद्र लेख में एक बार फिर मुखौटे के कलात्मक शिल्प का प्रयोग करते हुए पहेली बूझने और बुझाने में पारंगत आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने अघोरनाथ के अनुरोध पर चंद्रलेखा की आत्मकथा को ब्योमकेश शास्त्री की टिप्पणियों के साथ संपादित व प्रकाशित करने का भ्रम उत्पन्न किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्योमकेश शास्त्री हजर प्रसाद द्विवेदी के अभिन्न नहीं, उनके दोनों आरंभिक उपन्यासों में अपनी नाटकीय भूमिका का सफल निर्वाह करने वाले एक जीवित पात्र भी हैं। यह संयोग संयोग ही नहीं है कि पांडुलिपि पाने वाले औघड़ साधु अघोरनाथ आधुनिक विचारों के शिक्षित सिद्ध हजर प्रसाद द्विवेदी के समान धर्मा है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आजकल के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और यह कथा श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखी जाएगी, उपन्यासकार ने फिर भी इसे संपादित और प्रकाशित करने की जहमत क्यों उठाई। इस पर ब्योमकेश शास्त्री की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। इन्वर्टेड कॉमा, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि कथा के प्रति आरंभ में मेरी विशेष श्रद्धा नहीं थी, पर पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इसे एकदम अवज्ञा योग्य नहीं समझा जा सकता। कथा में प्राचीनता के चिन्ह है, कम से कम प्राचीन साहित्य के वह असमर्थित नहीं कही जा सकती। इन्होंने कहा बंद, ब्योमकेश शास्त्री की टिप्पणी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह न केवल चारुचंद्र लेख की दिशा एवं दृष्टि की ओर संकेत करती बल्कि इसका सूत्र आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी के इतिहास बोध से विन्यस्त है जिसकी अपेक्षा में अपने प्राचीन साहित्य धर्मशास्त्र और साधना उपासना की विभिन्न पद्धतियों को पूजना अथवा अवज्ञा की दृष्टि से न देखकर उनमें परिवर्तन के लिए सृजनात्मक संभावनाओं की तलाश करते हैं। इसलिए उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में अतीत और वर्तमान परंपरा और आधुनिकता शास्त्र और लोक साथ साथ चलते दिखाई पड़ते हैं। ग्रहण और त्याग के विवेक से परंपरा और आधुनिकता के मूल्य दृष्टि से इनका आकलन करना द्विवेदी जी के उपन्यासों की रचनाशीलता का मौलिक आधार है। संभव है कि इस इतिहास बोध को नजरअंदाज कर समकालीन रचनाशीलता के मूल्य दृष्टि से देखने वाले आलोचक को चारुचंद्र लेख में वस्तु विन्यास का बिखराव और रूपबंध का विघटन दिखाई पड़े जो एक सीमा तक सच भी है, किंतु बहुत सपाट ढंग से उसे तंत्र साधना की जानकारी देने वाला उपन्यास मान लेना न्यायसंगत न होगा। वस्तुतः सातवाहन, चंद्रलेखा और मैना के त्रिकोणात्मक प्रेम कथा ही इस उपन्यास का मूल विषय और शाक्त साधना के प्रतीक शैली में विन्यस्त होने के कारण घटना चक्र के भीतर अनेक घटना चक्रों की जटिल संरचना ने उनके सुसंगत निर्वाह को कठिन बना दिया है। राजा सातवाहन, उनकी पत्नी चंद्रलेखा और चंद्रलेखा के सहचरी मैना प्रतीक कथा में क्रमशः ज्ञान, इच्छा और क्रिया के प्रतीक हैं और एक दूसरे से विच्छिन्न होने के कारण ये एकाकार नहीं हो पाते। ज्ञान की चेतना से अलग थलग पड़ी इच्छा शक्ति सिद्धियों के लिए भटकती हुई कुंठित हो जाती है तथा इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति की निरंतर घात प्रतिघात का अंत इच्छा की गोद में क्रिया के आत्मघात से होता है। इस प्रकार क्रिया शक्ति के अभाव में इच्छा और ज्ञान के निष्क्रिय मिलन बिंदु पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। उपन्यास का आरंभ सीधी मौला की खोज में निकले उज्जैनी के राजा सातवाहन की यात्रा से होता है। यात्रा के बीच ही उनकी भेंट सारे स्त्री लक्षणों से संपन्न परम सुंदरी चंद्रलेखा से होती है, जो स्वयं कोटि भेद रस सिद्ध करने वाले तपस्वी नागनाथ की खोज में निकली है। तपस्वी को खोज निकालने के लिए वे राजा से प्रार्थना करती हैं और इसके लिए बेझिझक सातवाहन की रानी बनना भी स्वीकार कर लेती है। राजधानी वापस आकर राजा चंद्रलेखा से विवाह करने के साथ ही तपस्वी नागनाथ को भी खोज निकालते हैं। पूरा देश विदेशी आक्रमणकारियों से भयाक्रांत और अशांत है। आपसी स्वार्थ और परस्पर ईर्ष्यादेश के कारण देश का नेतृत्व संकटापन्न है। ऐसी स्थिति में सातवाहन के मंत्री विद्याधर भट्ट उन्हें नए सिरे से बिखरे हुए नेतृत्व को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं। चंद्रलेखा की रानी बन जाने के साथ ही उज्जैनी में राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाती है। काशी में चैत्रचंद्र के मंत्री रह चुके विद्याधर भट्ट 32 लक्षणों से युक्त चंद्रलेखा की जन्म कथा से परिचित हैं और राजनीतिक शक्ति संचय की दृष्टि से चंद्रलेखा के प्रति काफी आशान्वित हैं, किंतु अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर यह सोचकर आशंकित भी हैं कि कहीं राजा सातवाहन चंद्रलेखा के रूप जाल में आबद्ध होकर निष्क्रिय न हो जाए। यही वह स्थल है जहां उपन्यासकार अपने कथा सूत्रों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए एक बृहत जीवन मूल्यों की स्थापना का संकेत देता है। रानी चंद्रलेखा राष्ट्रीय राजनीति में राजा सातवाहन का हाथ जरूर मजबूत करने के लिए दृढ़ता के साथ आगे आती है। विद्याधर भट्ट को आश्वस्त करती हुई संकल्प करती है कि इस देश में मिथ्याखंड अभिमान को चूर्ण करने के लिए चंद्रलेखा वज्र के हथौड़े का काम करेगी और हतदर्प हीन वीर पराजित प्रजा के चित्त में इतिहास के मंगल का प्रेरणा देने के लिए अमृत की तरह झरेगी। चारु चंद्रलेख इस संकल्प को विकसित करने के क्रम में वे एक जननेत्री की तरह राजधानी के सैनिकों को संबोधित करती हैं और अपने वक्तव्य के अंत में जब घोषित करती हैं कि वीरों, राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया, अब कहीं आशा है तो प्रजा के संगठित शक्ति से। ऐसा लगता है कि उपन्यास का तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को अपने वर्तमान की अपेक्षा में एक भविष्योन्मुखी दिशा देने का संकेत दे रहा है। कहना न होगा कि चंद्रलेखा का यह वक्तव्य ज्ञान की चेतना से युक्त इच्छा शक्ति के महान संकल्प के साथ ही उनके मानवीय व्यक्तित्व की तेजस्विता का भी प्रमाण है, जो आगे चलकर सिद्धयोगिनी चंद्रलेखा के निष्प्राण व्यक्तित्व में जड़ीभूत हो गया। आधुनिक नवजागरण की चेतना से उत्पन्न उनके उद्बोधन का स्वर जो राष्ट्र की बृहत्तर समस्याओं को जूझने की चुनौती का आभास दे रहा था, सामाजिक धरातल पर मूल प्रतिज्ञा बनकर बिखर गया। न तो रानी चंद्रलेखा में भट्टनी के प्रेम की जीवंतता का संचार हो सका है और न ही सिद्ध योगिनी चंद्रलेखा में भैरवी महामाया के महिमामय व्यक्तित्व की ओजस्विता का आभास मिल पाता है। मालव जनपद में घूम घूम कर सामान्य जन समुदाय में आत्मविश्वास और लोक जागरण पैदा करने वाली जनपद पार्वती चंद्रलेखा के सामाजिक लोकप्रियता और प्रभाव को नजरअंदाज करता हुआ उपन्यासकार बड़े नाटकीय ढंग से इनकी सूचना मात्र देकर रह जाता है कि रानी की योजना चरितार्थ हुई और मालव जनपद में नवजीवन के उल्लास के चलते शत्रु को लौट जाना पड़ा। किसी प्राचीन परंपरा अथवा लोक परंपरा का स्मृति चिन्ह हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए किसी पुरातात्विक विशेषता से कम महत्व नहीं रखते। ये उनके लिए विपुल संभावनाओं से भरे हुए हैं और इनके द्वारा ही वे अपने सांस्कृतिक इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोक कथाएं, किंवदंतियां, किस्से, कहानियां और गप उनके उपन्यासिक रचनाशीलता में आवश्यक उपादान की तरह प्रयुक्त हुए हैं। प्रस्तुत उपन्यास में उन्होंने गधैया ताल की दंत कथा का उपयोग इसी अर्थ में किया है और इससे राजनीतिक और सांस्कृतिक का इतिहास के विविध सूत्रों को जोड़ने का प्रयास किया है। तपस्वी ने विक्रमादित्य की जो कहानी सुनाई उसके अनुसार उनके पिता गर्दभिल्ल ने एक तपस्या तापस कन्या सरस्वती से प्रेम किया और उसके कई कालकाचार्यों ने अपमान का बदला लेने के लिए यवनों को बुलाया तथा उसके पुत्र ने खोए हुए राज्य का उद्धार किया। इसी क्रम में वह यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि कालिदास ने शकुंतला नाटक लिखकर सरस्वती और गर्दभिल्ल को शकुंतला और भरत के रूप में चित्रित किया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शकुंतला और भरत वास्तव में वीर विक्रमादित्य के माता पिता थे या नहीं। द्विवेदी जी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि शकुंतला के माध्यम से विक्रमादित्य की माता को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। इससे वे यह भी संकेत करना चाहते हैं कि किस प्रकार ये निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए विदेशी आक्रांता की सहायता से सामंतों की आपसी लड़ाई ने देश को बर्बाद किया। इतिहास और वर्तमान की यह समानांतरता आगे चलकर शास्त्र और लोक की अपेक्षा में और स्पष्ट हो जाती है। इनोटेड कमा शास्त्रकारों ने कहा है कि अटवी सेना निकृष्ट होती है, पर क्या इन विकट शत्रुओं के लिए अटवी सेना ही उपयुक्त न होती? शकों से जूझने के लिए विक्रमादित्य ने बिल्लों और मुसारों की सेना का संगठन किया था। उन्हीं के बल पर वे शाकारी बन सके थे। इनोटेड कमा चारुचंद्र लेख विक्रमादित्य की इस लोक शक्ति की पहचान के कारण उपन्यासकार ने जन नेता के रूप में याद करता है और सातवाहन को विक्रमादित्य की परंपरा का उत्तराधिकारी बनने की ओर उन्मुख करता है। इससे किसी तरह के सामंतवाद की स्थापना का भ्रम न हो, इसलिए किसी भी प्रकार की आशंका को निर्मूल करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं। इनोटेड कामाबंद देवी के चरणों पर सिर रखकर शपथ करो कि तू सीधे जनता से संपर्क रखेगा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं मानेगा, धरती को बपौती नहीं धरोहर समझेगा, सामंती प्रथा का प्रच्छेद करेगा। यूनाइटेड कामापन आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तांत्रिक सिद्ध अक्षोभ्य भैरव का संदेश है। तंत्र साधना के विभिन्न उपासना पद्धतियों अनुष्ठानों तथा उनसे संबंधित अनेक घटनाओं लोक जीवन में व्याप्त अनेक किंवदंतियों तथा अंधविश्वासों का किंचित विस्तृत वर्णन यदि उपन्यासकार ने दिया है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह उनसे आक्रांत है या कि उनके प्रति वह आस्थावान है। इसके माध्यम से उपन्यासकार यह बताना चाहता है कि एक लंबे समय तक भारतीय जनमानस और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को दूर तक प्रभावित करने वाली चमत्कारिक साधना का जादू अब टूट रहा है, मठ उजड़ रहे हैं और नाटी माता का गृहस्थाश्रम लोक शक्ति का केंद्र बन रहा है। लेकिन लोक जीवन में योगियों और सिद्ध से संबंधित चमत्कारिक घटनाएं दंत कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। सिद्ध योगिनी चंद्रलेखा का काम रूप से सोमतीर्थ तक जनता में आत्मविश्वास भरने तथा अब दुर्गा के रूप में माने जाने की चर्चा उपन्यासकार ने की है। पौराणिक अवतारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण लोक जीवन में पुराने देवताओं के पुनर्जन्म अथवा नए देवी देवताओं के जन्म की बड़ी व्यापक विस्तृत प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। समाज में साहसिक कृतियों तथा त्याग तप एवं वैराग्य को देवत्व की गरिमा से अलंकृत कर बदलते परिवेश में मनुष्य नई शक्ति संचित करता आया है। वस्तुतः चारुचंद्र लेख में उपन्यासकार हरि प्रसाद द्विवेदी तत्कालीन भारतीय समाज के सांस्कृतिक परिपार्श्व का इतना विस्तार इसलिए करते हैं कि वह मध्यकालीन लोक जागरण की प्रेरणा पृष्ठभूमि है। सवाल यह है कि शास्त्रीय बाह्याचारों अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर प्रहार करने वाली मनुष्य मात्र की साधना उपासना का अधिकार दिलाने वाली जाति पाति विरोधी जिन विशेषताओं के कारण लोक जागरण के उन्नायक संतों और सामाजिक भूमिका को प्रगतिशील माना जाता है उन्हें विशेषताओं से युक्त सिद्धोनाथों और योगियों की सामाजिक भूमिका को एकदम प्रतिक्रियावादी कैसे माना जा सकता है? गोरखनाथ ने जोग ही नहीं जगाया है, लोक को जगाने में भी उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। शुद्धतावादियों के लिए तो संतों के जाति धर्म निरपेक्ष भक्ति भी परंपरा वाय प्रतीत हो सकती है। इसीलिए हरि प्रसाद द्विवेदी सिद्ध साधना की रूढ़ियों विकृतियों और उसकी निर्वीर्यता को गर्हित और निष्प्राण मानकर बराबर उसे त्याज्य घोषित करते हैं, किंतु सिद्धों नाथों और योगियों की सामाजिक भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर पाते। चारुचंद्र लेख में वे ढोंगी और पाखंडी साधकों की कम भर्त्सना नहीं करते, बड़े आक्रोश के साथ वे लिखते हैं। यूनाइटेड कामा कार्यों और भगवानों को अपना नेता समझने वाले जाति की दशा जो होनी चाहिए वही आज इस जनसमूह की दशा होगी। निरर्थक मंत्रों के निरर्थक रट देश में प्राण शक्ति का संचार नहीं कर सकती। यूनाइटेड कामा बंद चारुचंद्र लेख। इसी प्रकार सिद्धियों के प्रति अभी भी मोहग्रस्त हुए अमोघ वज्र का उपहास करते हुए गोरखनाथ कहते हैं। यूनाइटेड कामा बंद अब भी तुम इस घबले में पड़े हो अमोघ, हमारी आंखों के सामने गजनवी से साकल तक के समस्त विहार और रत्न स्तूप ध्वस्त हो गए, सोमेश्वर तीर्थ लुट गया, इसी पत्तन से ईंट बच गई, नालंदा और ओदंतपुरी अब भी जल रही है और तुम्हारी यह जादूगरी की साधना अब भी अव्याहत गति से चल रही है। इनोटेड कामाबंद चारुचंद्र लेख। सिद्धि साधना की अप्रासंगिकता और मनुष्य सत्य की प्रतिष्ठा का द्वंद्वात्मक क्रम बराबर चलता रहता है। महाचीत कि किसी बड़े विहार से आए नवागत तपस्वी विशिलपात कहते हैं कामा सिद्धियां मनुष्य को कुछ विशेष बल नहीं देती, एक साधारण किसान जिसमें दया माया है सच झूठ का विवेक है और बाहर भीतर एकाकार है वह भी बड़े से बड़े सिद्ध से ऊंचा है। इनोटेड कामा बंद विशिलपात द्वारा रेखांकित यह मनुष्य वस्तुतः न मनुष्यात् श्रेष्ठरम ही किंचित की परंपरा में हरि प्रसाद द्विवेदी के विश्व मानवतावाद के समकालीन मनुष्य है। संभवतः आज की नई रचनाशीलता का समकालीन मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। यह आकस्मिक नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं को प्रतिकार करने के लिए चंद्रलेखा ने प्रजा को उद्बुद्ध करने की जो प्रेरणा दी थी उसे राजा सातवाहन और उनके मंत्री विद्याधर भट्ट ने गुरु मंत्र का असवा महत्व दिया। विद्याधर भट्ट बार बार प्रजा को संघबद्ध करने और उसमें आत्मगौरव का बोध जगाने के लिए बोध प्रधान को सक्रिय बनाए रखते हैं और सातवाहन भी कालिंजर का निकुंज काशी और मगध का चक्कर लगाते हुए भयत्रस्त हतोत्साह और निरग जनसमूह में उनकी आशा और आकांक्षा का आकलन करते पाए जाते हैं। इस क्रम में उन्होंने छोटी से छोटी समझे जाने वाली जाति से मित्रता की और अत्यंत पतित समझे जाने वाले लोगों के बीच जाकर उनके निदारुण दुख को दर्द को समझने का प्रयास किया। इस संगठित लोक शक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में नियोजित कर देने का ही परिणाम था कि विद्याधर भट्ट विदेशी आक्रांताओं को पराजित करने में सफल हो सके। इन शक्तिपुंजों के साहसिक शौर्य से अभिभूत विद्याधर भट्ट राजा सातवाहन से कहते हैं, यूनाइटेड कामा, तुमने जिन किसानों को और साधारण प्रजा वर्ग के लोगों को मेरी सहायता के लिए भेजा था उनके कर्तव्य देखकर मैं चकित हूँ। चंबल के इन क्रांतिकारी ढूंहों के सरल मार्ग उन्होंने भी आविष्कृत किया है। बेटा, तुमको पता भी नहीं कि साधारण घरों के छोकरे और छोकरियों ने कैसे अद्भुत सहायता की है। भैंस चलाने वाले बालकों ने, अज्ञात कुलशील पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों ने, हल चलाने वाले खेतिहरों ने, भीख मांगने वाले निठल्लों ने, परान्न पुष्ट संड मुंड साधुओं ने, नाच गान से जीवन यापन करने वाले नर्तकियों ने, रस्से पर खेल दिखाने वाले नटों और नटनियों ने अद्भुत देशभक्ति का परिचय दिया है। नोटेड कामबल, चारू चंद्रलीक। कौन कहता है कि यह समकालीन मनुष्य का अकुंठ आख्यान नहीं है। यहाँ पर आठवीं सेना का इतिहास तथा आधुनिक नवजागरण में किसानों मजदूरों के विद्रोह भूमिका को एकाकार कर दिया गया है। यह सामान्य मनुष्य ही आचार्य प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का लक्ष्य है। उनके मनुष्य आकाश में उड़ते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, लेकिन दृष्टि बराबर धरती की ओर रहती है। आकाश और धरती तथा शास्त्र और लोक की समानांतरता में उपन्यासकार की आस्था धरती के साथ है। विद्याधर भट्ट कहते हैं, यूनाइटेड कामा, धरती पर विश्वास करो, आकाश ग्रह धरती के गुलाम है। यूनाइटेड कामा बन। इस प्रकार मनुष्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अतीत और वर्तमान दोनों के समान रूप से विद्यमान है। अतीत और वर्तमान की अविच्छिन्नता ही उनके उपन्यासों में भारतीयों की पहचान कराती है। उपन्यासकार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि युद्ध के घिनौने को परिणाम सबसे अधिक सामान्य मनुष्य को ही भुगतने पड़ते हैं, अतः उनमें आत्मविश्वास पैदा करना ही सबसे बड़ा पुण्य संकल्प है। मनुष्यता रहेगी तो देश भी रहेगा, इसलिए मनुष्यता की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। यही समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है। देश को बचाना है तो समाज के बिखराव को बचाना होगा, और यह तभी संभव है जब हम उसकी प्राण शक्ति मनुष्य को उसकी संपूर्णता में पहचाने। पर सभी को एक साथ नहीं किया जा सकता। पहला काम पहले करना चाहिए और पहला काम है प्राण रक्षा, क्योंकि यूनाइटेड कामा, प्राण समग्रता का धर्म है। सुधार फिर हो लेंगे, क्रांतियां आती जाती रहेंगी, पर जिसके रहे बिना कुछ भी नहीं रह जाएगा वह हमारा समाज कुल और जाति की संकृताओं और मिथ्या मूढ़ ग्रहों से मुक्ति पाने का प्रयत्न बाद में होगा। यूनाइटेड कामा बन। इस प्रकार चारु चंद्रलेख में रासोन्मुखी सामंती व्यवस्था और निर्वीय तंत्र साधना के समानांतरता ही प्रजातंत्र के उद्घोष का संकल्प सतत गूंजता रहता है, कभी दबता तो कभी उमड़ता हुआ। आरंभ में यह स्वर चंद्रलेखा के उद्बोधन में सुनाई पड़ता है, प्रेम कथा के परिधि में आगे चलकर वह मैना से जुड़ जाता है। राजा सातवाहन से संबद्ध होकर मैना राजा की निष्क्रियता और जड़ता को संपादित करती है। उन्हें छोटी छोटी सीमाओं के घरों से बाहर निकालकर अकुतो भय होने का अमृत संदेश देती है। फूंक फूंक कर पैर बढ़ाने की कायरता को झकझोरती है और साहस में सिद्धि पसने का आख्यान कर आशा का संचार करती है। अपनी ग्रामीण वाहिनी का नेतृत्व करने वाली मैना साहसिकता की जीवित प्रतिमा है। आत्मदान ही उसका धर्म है और संघर्ष उसका कर्म है। वह आग में खेलने के लिए आधी सी बहती और अमृत सी झरती है, बिजली सी कड़कती और मेघ सी बरसती है। वह नागर घाटी के नटखट तेज है। सिंहवाहिनी और महिषमर्दनी के दोनों विग्रहों का जीवंत अभिनय है। न जाने कितनी महिषमर्दनी के विग्रह से सिंह पुरुषों को चुनौती दी है, न जाने कितनी बार सातवाहन का हृदय गलकर सिंहवाहिनी के चरणों पर ढरक जाना चाहा है। उस ऐसी ही लगती है उपन्यासकार के कल्प सृष्टि की मैना, चंचल नटखट अल्लड़ वज्रदपि कठोर रणिम मुदुनी कुसुमादपि। वसुत मैन सिंह और मैना के त्वरे व्यक्तित्व की नाटकीयता उपन्यासकार की स्त्री जनोचित लज्जा के तत्ववाद का परिणाम है, जिसके चलते उसका प्रेम भी भट्टनी की तरह अद्रिप्त और गूढ़ बनकर रह गया है। अन्यथा मैना चारु चंद्रलेख का सबसे जीवंत और सबसे आकर्षक चरित्र है। प्रेम कथा और प्रतीक कथा के समानांतर निर्वाह के जटिल प्रक्रिया के कारण चंद्रलेखा के व्यक्तित्व को अतिक्रमित कर पाए जाने के बावजूद मैना के प्रेम की चरितार्थता अनिर्दिष्ट ही रह जाती है। मैना ने सातवाहन को पहली बार देखा तो लगा जैसे जन्म जन्मांतर से इसी रूप को खोजती फिर रही थी। मन में कोई लोभ नहीं था, पालो ऐसी लालसा नहीं थी, था तो केवल अपने को निःशेष भाव से उलेड़ देने का भाव। लेकिन यह मैन सिंह के पुरुष विग्रह द्वारा ही संभव था। मैना के नारी विग्रह को स्वाभाविक व्यवस्था यह थी कि उसका अर्ध शुद्ध गंगा जल की धार नहीं बन पाता। देना चाहती है गंगा जल की धार, आगे उतरा कर बह जाना चाहता है फूल। उपन्यासकार एक ओर तो मैना बोधा के प्रेम प्रसंग को उभरना चाहता है, दूसरी ओर सातवाहन के प्रति उसके कोमल अनुराग को आत्मदान की सेवा भावना से जड़ीभूत कर देता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का प्रसाद ग्रहण करके भी भूत प्रधान उसे ग्रहण नहीं कर पाते और देवी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल राजा के लिए देवी की भाव प्रतिमा बन जाता है। इसी प्रकार चंद्रलेखा ने भी अपने दाम्पत्य प्रेम से कटौती कर एक हिस्सा तपस्वी नागनाथ के लिए इस आशा से बचा रखा है कि उनके हृदय में बंद द्वार खुलने पर देने के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्यों न हो। आखिर इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तंत्र साधना में स्थित पूजा की महिमा की परकिया प्रेम के रूप में मध्यकालीन कृष्ण भक्ति की प्रेम परंपरा में पल्लवित होकर चैतन्य देव की गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चरम विकास पाती है, जहां स्वकीय परकीय भाव एकाकार हो गए हैं। अस्तु चंद्रलेख चार चंद्रलेख तांत्रिक साधना के विस्तार का भ्रम भले ही उत्पन्न करे, लेकिन वह मूलतः तंत्र पर भक्ति की विजय का उद्घोषी है। त्रिकोणीय प्रेम की प्रतीक कथा में विन्यस्त एकाधिक प्रेम प्रसंगों के बिखरते हुए जटिल स्तर भेदों को एक सूत्रता में बात पाना हजर प्रसाद द्विवेदी जैसे भारतीय सर्जक की शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है। लेकिन इसके लिए उन्हें मनुष्य और समाज की अपेक्षा में अपने अत्यंत प्रिय भाव सूत्र दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ कर देने की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी है। नायक के महान संभावना से भरा हुआ सातवाहन प्रेम की इस त्रिआयामी प्रतीक कथा में एक अनायक चरित्र बनकर रह गया है। वह केवल अन्य पात्रों की गतिविधियों द्वारा तेजी से परिवर्तित घटना चक्रों का मूल दृष्टा प्रतीत होता है। इसलिए कभी कभी मैना और विद्याधर भट्ट के अतिरिक्त बोधा जैसे गौण पात्र भी प्रधान हो उठते हैं और उपयुक्त अवसर पर अपनी प्रासंगिकता भी प्रमाणित करते हैं। पति के रूप में, प्रेमी के रूप में अथवा लोकनायक के रूप में उनकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बन पाती, फिर भी दूसरे उपन्यास में लोक शक्तियों का संगठन उनके नाम पर चलता रहता है और वही नेतृत्व के सूत्रधार भी हैं। शायद लोक शक्तियों को संगठित करने और समाज के बिखराव से बचाने के नेतृत्व को एक शोभा चाहिए, चाहे वह माणभट्ट की आठकथा में थुअर मिलिंद हो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हो, अथवा आजाद भारत की संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण हो। इससे नेतृत्व वजनदार होता है और लोक शक्ति में आत्मविश्वास जगता है। उपन्यास का मूल प्रयास जनता में आत्मविश्वास पैदा कर लोक शक्ति को जगाना है, जिसे उपन्यास के माध्यम में आरंभ में बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया गया है। छीण बल अवंतिका का नरेश जनता के नेतृत्व के प्रतीक मात्र है। इसी अर्थ में उसे सामंती व्यवस्था के पतन गाथा और मध्यकालीन लोक जागरण की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है, जिसका नेतृत्व सामूहिक रूप से कई स्तरों पर बटा हुआ है। धर्मरक्षकों का एक अलग दल है, 12 संप्रदाय के त्रिशूलधारी योगियों का और योगियों की इस संगठित सेना ने परम भट्टारिक विमल देवी के अवतार के रूप में चंद्रलेखा का नेतृत्व स्वीकार करते हुए धर्मयुद्ध की घोषणा कर दी है। इस संगठन पर उपन्यासकार की आशंका है कि प्रतिज्ञा तो बुरी नहीं है, पर क्या इन मूर्ख गाजाखोरों की सेना इसे निभा सकेगी। यह विद्याधर भट्ट द्वारा संगठित सेना है, जिसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए लूटमार करने का अधिकार दिया है। दूसरी ओर लोक शक्ति के बीच में उमड़ती हुई मैना की ग्रामीण वाहिनी है, जिसके संगठन विद्याधर भट्ट के शिष्य बोधा प्रधान की भूमिका है। ग्रामीण वाहिनी विद्याधर भट्ट के अग्रिम मोर्चे पर हिरावल दस्ते का काम करते, क्योंकि उनकी 8वीं सेना अभी निर्माणाधीन है और उसे अपना जवर दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, किंतु ग्रामीण वाहिनी की परीक्षा के कसौटी पर खरी उतरने का प्रमाण पत्र विद्याधर भट्ट दे चुके हैं। ग्रामीण वाहिनी की एक और शाखा भी है, महिला सेवा दल, बहुत कुछ इंदिरा जी की वानर सेना की तरह, जिसका मुख्यालय है नाटी माता का भक्ति आश्रम। नाटी माता उनकी संरचिका है। सेवा दल की महिलाएं आसपास के इलाकों में रहती हैं और नाटी माता के एक इशारे पर एकत्र हो जाती हैं। नाटी माता की उपस्थिति में आश्रम की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राजा सातवाहन की देख रेख करना, आवश्यक संदेशों के आदान प्रदान में सहायता करना तथा सिद्ध योगिनी चंद्रलेखा की असिद्ध व्यथा का उपचार करना इनका मुख्य कार्य है। ये कभी कभी सातवाहन की स्थायी सेविका मैना के नेतृत्व में कुछ राजनीतिक कार्य भी कराती है। मैना इस आश्रम की दीपशिखा ही नहीं, राजा सातवाहन और मंत्री विद्याधर भट्ट के असाध्य साधन की सिद्धि भी है। उनकी लाचार सेना के लिए रज्जु मार्ग से रसद पहुंचाने, दुष्ट गुंडकेश्वर के चुंगल से नेहा नींद और धीर शर्मा को मुक्त कराने, अशोक चल्ल की असंभव से तीसरी शर्त को पूरा करने तथा अशोभ्य भैरव की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने जैसे असंभव कार्यों को सफल बनाने में मैना की भूमिका अविस्मरणीय है। गोरक्षनाथ और महाचीन से आए नवागत तपस्वी मिसिलपाद के लोक जागरण का सूत्र विभक्ति के इस गृहस्थ आश्रम की लोक शक्ति में विन्यस्त है। उपन्यास के सारे कथा सूत्र किसी न किसी प्रकार नाटी माता के इस भक्ति आश्रम से संबंधित दिखाई पड़ते हैं और उनका वर्तमान जीवन स्वयं पतनशील सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। अमोघ वज्र को उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मध्यकालीन इतिहास बोध के प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। पश्चिम की ओर जो इस्लाम आ रहा है उसे ठीक ठीक समझो। उसके एक हाथ में अमृत का भाण है, दूसरे में नग्न कृपाण। वह समानता का मंत्र लेकर आया है, सड़े गले आचारों को चुनौती देने का पार साहस लेकर उद्धृत हुआ है। चारुचंद्रले कहने की आवश्यकता नहीं है कि हजर प्रसाद द्विवेदी पहले इतिहासकार है जिन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास की गहरी छानबीन करने के क्रम में इस्लाम और उसके प्रभाव को एक गहरी दृष्टि से न देखकर उसके मंगल भांड को पहचानते हुए स्थापित किया है कि हिंदी भक्ति आंदोलन हिंदू बनाम मुस्लिम इस्लाम के संघर्ष का परिणाम नहीं बल्कि भारतीय समाज के अंतर्विरोधों से उत्पन्न एक विराट जन आंदोलन है तथा सूफी एवं कृष्ण भक्त कवियों का प्रेम भी भारतीय परंपरा में विकसित हुआ है। उनकी यह भी मान्यता है कि वर्णाश्रम धर्मी समाज व्यवस्था के साथ मुस्लिम आक्रांताओं का तालमेल इसलिए नहीं हो सका है कि पूर्व आक्रांताओं से भिन्न उनके पास न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा थी बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति के विरोधी उपादान भी हैं। अमोघ वज्र का प्रयुक्त कथन वस्तुतः भक्ति आंदोलन संबंधी द्विवेदी जी के इसी इतिहास बोध की ओर उठी हुई अंगुली है। उपन्यासकार की मानवतावादी दृष्टि ने जहां महान इस्लाम की प्राणदायिनी शक्ति सड़े गले आचारों को चुनौती देने वाले उसके अपार साहस तथा दलित उत्थान के अपूर्व संकल्प की प्रगतिशीलता को रेखांकित किया है, वहीं विश्व नेतृत्व की लालसा से उत्पन्न उसकी अहर्मण्यता अमरवरता का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार इस्लाम की अपेक्षा में मध्यकालीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों की पहचानना ही उपन्यासकार का लक्ष्य है। समाज की सड़ी गली मान्यताओं, वर्ण व्यवस्था की विषमता तथा शताब्दियों से लाखों करोड़ों को अपमानित करने में मिथ्या गर्व करना ही के कारण ही सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। इस ओर संकेत करते हुए उपन्यासकार लिखता है, इनोटेड कामा, जिन्हें हमने पैरों तले दबा रखा है वही एक दिन नीचे से हमारा पैर पकड़कर हमें चलने में असमर्थ बना दे रहे हैं। चारुचंद्रली निश्चय ये लोक शक्ति पहचाने वाले द्विवेदी जी का मध्यकालीन बोध है। उनकी दृष्टि में राजधानी राज्य नहीं होती, जनता है वास्तविक राज्य होती है। चारुचंद्रली इस तथ्य को रानी ने समझा था पर वे ढोंगे साधुओं के चक्कर में पड़ गई हैं और विद्याधर भट्ट इन ढोंगों की सेवा सेना सजा कर देश का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन इसके देश को डूबने से नहीं बचा जा सकता। फिर अमोघ वज्र की ठीक सोच समझ विद्याधर भट्ट के संगठनात्मक कर्मठता की समानांतरता की अपेक्षा में उपन्यासकार सोचता है कि इनोटेड कामा अमोघ वज्र ठीक कर रहे थे और विद्याधर भट्ट ठीक कर रहे थे। इनोटेड कामा वन उपन्यास का ठीक करने को ठीक सोचने से ज्यादा महत्व इसलिए देता है कि उसके अनुसार करने वाला इतिहास निर्माता होता है, सिर्फ कहने या सोचने वाला इतिहास के चक्र के नीचे पीसा जाता है, लेकिन ठीक सोच के साथ ठीक करने के सवाल को वह टाल जाता है। इनोटेड कामा सुधार फिर हो लेंगे, क्रांतियां आती जाती रहेंगी क्योंकि तात्कालिक समस्या समाज और मनुष्यता की रक्षा का है। इस प्रकार चारुचंद्र लेख में जिस जनता राज्य की कल्पना की गई है वह वस्तुतः उनके मानवतावादी समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। सब मिलकर चारुचंद्र लेख मध्यकालीन लोक जागरण में विन्यस्त सामंती व्यवस्था की ऐसी पतन गाथा है जिसके विस्तृत सांस्कृतिक परिपार्श्व में अतीत और वर्तमान तथा शास्त्र और लोक के सापेक्षित संबंधों में मनुष्यतः मनुष्य सत्य और लोक शक्ति को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से चारुचंद्र लेख को हजारी प्रसाद द्विवेदी की लोकोन्मुखी पांडित्य की सृजनात्मक कल्प सृष्टि के रूप में एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जा सकता है।